यशाया बाब 5। आओ मैं अपने महबूब के लिए गीत गाऊं, एक गीत जो उसके अंगूर के बाग के बारे में है। मेरे प्यारे का बाग था, अंगूर का ये बाग जरखेज पहाड़ी पर था। उसने गोडी करते करते उसमें से तमाम पत्थर निकाल दिए, फिर बेहतरीन अंगूर की कलमें लगाईं। बीच में उसने मीनार खड़ा किया ताकि उसकी सही चौकीदारी कर सके। साथ साथ उसने अंगूर का रस निकालने के लिए पत्थर में हौज तराश लिया। फिर वो पहली फसल का इंतजार करने लगा। बड़ी उम्मीद थी कि अच्छे मीठे अंगूर मिलेंगे, लेकिन अफसोस, जब फसल पक गई तो छोटे और खट्टे अंगूर ही निकले थे। ऐ यरूशलम और यहूदा के बाशिंदो, अब खुद फैसला करो कि मैं उस बाग के साथ क्या करूं। क्या मैंने बाग के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं की थी? क्या मुनासिब नहीं था कि मैं अच्छी फसल की उम्मीद रखूं? क्या वजह है कि सिर्फ छोटे और खट्टे अंगूर निकले? पता है कि मैं अपने बाग के साथ क्या करूंगा? मैं उसकी कांटेदार बाड़ को खत्म करूंगा और उसकी चार दीवारी गिरा दूंगा। उसमें जानवर घुस आएंगे और चरकर सब कुछ तबाह करेंगे, सब कुछ पांव तले रौंद डालेंगे। मैं उसकी जमीन बंजर बना दूंगा, न उसकी बेलों की काट छाट होगी न गोडी की जाएगी। वहां कांटेदार और खुदरव पौधे उगेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि मैं बादलों को भी उस पर बरसने से रोक दूंगा। सुनो, इसराइली कौम अंगूर का बाग है जिसका मालिक रब्बुल अफवाज है। यहूदा के लोग उसके लगाए हुए पौधे हैं और जिनसे वो लुत्फंदोज होना चाहता है। वो उम्मीद रखता था कि इंसाफ की फसल पैदा होगी, लेकिन अफसोस, उन्होंने गैर कानूनी हरकतें की। रास्ते की तवक्को थी, लेकिन मजलूमों की चीखें ही सुनाई दी। तुम पर अफसोस जो एक के बाद बिगड़े घरों और खेतों को अपनाते जा रहे हो। आखिरकार दिगर तमाम लोगों को निकलना पड़ेगा और तुम मुल्क में अकेले ही रहोगे। रब्बुल अफवाज ने मेरी मौजूदगी में ही कसम खाई है, यकीनन ये मुतअद्दिद मकान वीरान हो सुनसान हो जाएंगे। इन बड़े और आलिशान घरों में कोई नहीं बसेगा। 10 एकड़ जमीन के अंगूरों से मैं के सिर्फ 22 लीटर बनेंगे और बीज के 160 किलोग्राम से गल्ला के सिर्फ 16 किलोग्राम पैदा होंगे। तुम पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठकर शराब के पीछे पड़ जाते और रात भर मैं पी पी कर मस्त हो जाते हो। तुम्हारी ज़ियाफ़तों में कितनी रौनक होती है, तुम्हारे मेहमान मैं पी पी कर सुरूद सितार दफ और बांसुरी की सुरीली आवाज से अपना दिल बहलाते हैं। लेकिन अफसोस, तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि रब क्या कर रहा है। जो कुछ रब के हाथों हो रहा है उसका तुम लिहाज ही नहीं करते। इसलिए मेरी कौम जिलावतन हो जाएगी, क्योंकि वो समझ से खाली है। उसके बड़े अफसर भूखे मरेंगे और अवाम प्यास के मारे सूख जाएंगे। पाताल ने अपना मुंह फाड़ कर खोला है ताकि कौम की तमाम शान शौकत, शोर शराबा हंगामा और शादमान अफराद उसके गले में उतर जाएं। इंसान को पस्त करके खाक में मिलाया जाएगा और मगरूर की आंखें नीची हो जाएंगी, लेकिन रबुल अफवाद की अदालत उसकी अजमत दिखाएगी और कुद्दूस खुदा की रास्ती जाहिर करेगी कि वो कुद्दूस है। उन दिनों में लेले और मोटी ताजी भेड़ें जिलावतनों के खंडरात में यूं चरेंगी जिस तरह अपनी चरागाहों में। तुम पर अफसोस जो अपने कसूर को धो के बाज रस्सियों के साथ अपने पीछे खींचे और अपने गुनाह को बैलगाड़ी की तरह अपने पीछे घसीटते हो। तुम कहते हो अल्लाह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाए ताकि हम इसका मुआयना करें। जो मंसूबा इसराइल का कुद्दूस रखता है वो जल्दी सामने आए ताकि हम उसे जान लें। तुम पर अफसोस जो बुराई को भला और भलाई को बुरा करार देते हो। جو کہتے ہو کہ تاریکی روشنی اور روشنی تاریکی ہے، کہ کڑواہٹ میٹھی اور مٹھاس کڑوی ہے۔ تم پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہو اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو۔ تم پر افسوس جو میں پینے میں پہلوان ہو اور شراب ملانے میں بھی اپنی بہادری دکھاتے ہو۔ تم رشوت کھا کر مجرموں کو بری کرتے اور بے قصوروں کے حقوق مارتے ہو۔ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس طرح بھوسا آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ ہو جاتا ہے اور سوکھی گھاس آگ کے شعلے میں چرمر ہو جاتی ہے، اسی طرح تم ختم ہو جاؤ گے۔ تمہاری جڑیں سڑ جائیں گی اور تمہارے پھول گرد کی طرح اڑ جائیں گے، کیونکہ تم نے رب الافواج کی شریعت کو رد کیا ہے، تم نے اسرائیل کے قدوس کا فرمان حقیر جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا غضب اس کی قوم پر نازل ہوا، کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان پر حملہ کیا ہے۔ پہاڑ لرز رہے اور گلیوں میں لاشیں کچرے کی طرح بکھری ہوئی ہیں، تاہم اس کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھا ہی رہے گا۔ ایک دور دراز قوم کے لیے فوجی جھنڈا گاڑ کر اسے اپنی قوم کے خلاف کھڑا کرے گا، وہ سیٹی بجا کر اسے دنیا کی انتہا سے بلائے گا۔ وہ دیکھو دشمن بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں جو تھکا ماندہ ہو یا لڑکھڑا کر چلے، کوئی نہیں اونگتا یا سویا ہوا ہے، کسی کا بھی پٹکا ڈھیلا نہیں، کسی کا بھی تسما ٹوٹا نہیں۔ ان کے تیر تیز اور کمان تنے ہوئے ہیں، ان کے گھوڑوں کے کھر چکماک جیسے، ان کے رتھوں کے پہلے آندھی جیسے ہیں۔ وہ شیرنی کی طرح گرجتے ہیں، بلکہ جوان شیر ببر کی طرح دہاڑتے اور غراتے ہوئے اپنا شکار چھین کر وہاں لے جاتے ہیں، جہاں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دن دشمن غراتے اور متلاطم سمندر کا ساشور مچاتے ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا اور مصیبت ہی مصیبت، بادل چھا جانے کے سبب سے روشنی تاریک ہو جائے گی۔